पुण्य का क्या फल होता है? भागवत पुराण का क्या फल है? विभिन्न पुराणों में इसका बतलाए हैं, पवित्र मद्भागवत में जो बतलाया गया वही।
आप लोग बातचीत मत कीजिए, कोई आप दो मिनट के लिए चुपचाप रहिए, कोई मत है, दो मिनट के लिए।
विभिन्न पुराण में उनमें कर्म मन परनाशन अर्थ काम असाधारण रूप से मुक्त की बात बतलाई गई। कैसे रुपया पैसा मिलेगा, कैसे संतान पति स्त्री पति कैसे अच्छे मिले, और इस संसार में निर्विघ्न रूप में हम लोग सुख भोग सकें और उसके बाद भी मुक्ति मिल जाए, बस इतने को ही साथ मिले। किंतु भागवत सुनने और इसके महात्म्य में हम लोग देखते हैं, परीक्षित महाराज जी मूल श्रोता हैं, इनको क्या हुआ? इसके अतिरिक्त वक्ता में बहुत वक्ता होने पर भी सनक सनक समुद्र चारों कुमार ये वक्ता है, नारद जी श्रोता है, अगर नारद जी वक्ता है व्यास जी श्रोता है, और व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को सुनाया, पीछे से गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया, इसके बाद में सुख गोस्वामी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया। भागवत के काम भी नहीं है, जो चाहे इसे दूर ले, चाहे छुपी हुई कौड़ी इससे मांग ले, अथवा चिंता मांगने का भी चिंता मणि मांग ले, सब कुछ देने में समर्थ। किंतु इसका यह सब फल नहीं है, यहां तक कि धुंधकारी भूत हो गया था, प्रेत हो गया, उसने भागवत सुना केवल प्रेत जोनि से ही इसका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि वो बैकुंठ तक गया। बैकुंठ में दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक प्रेममयी सेवा और एक दुख दूर होकर के कुछ सुख की अनुभूति करें। इसको भगवत सेवा मिली इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम बताए परीक्षित महाराज जी को क्या हुआ? परीक्षित महाराज जी ने सुना भागवत, अंत में बारहवें दिन के बाद बारहवें दिन तक्षक फूलों में से हार में एक छोटा सा सत्र होकर के उसने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने उनको पूरा भागवत सुना दिए। उस समय में ये प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सुखदेव गोस्वामी जी जाए और उनको मैं कार्टून पर ले। सुखदेव गोस्वामी जी ने इनको खुद भागवत सुना करके चले गए। इसी बीच में परीक्षित महाराज जी की मैया पार्टी में रहती थी, वो बोली सुखदेव गोस्वामी चले गए, तो बड़े विद्वान आदमी हैं, हमको संस्कृत इत्यादि आती नहीं, हमारा दिमाग भी तुम्हारे जैसा तेज नहीं, अच्छा तुम सरल सहज भाषा में दो एक शब्दों में ये बतलाओ ये तुमने क्या सुना। हमें स्त्री बुद्धि बहुत ही स्थूल बुद्धि है, मैं कुछ समझ सकता, मेरी समझ में ये सब कुछ आया नहीं, मुक्ति क्या है और सब क्या चीज है ये मेरी समझ में आया। हम लोगों में भी हम लोग कुछ अधिकांश कहते ही हैं, कुछ लोग शिव ब्रह्म खाते हैं। परीक्षित महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हमने जो भागवत सुना सुखदेव गोस्वामी से, इसका सार हमने यही समझा कि ब्रज के जो गोपी लंपट कृष्ण है, उनके चरणों में हमारी वैसी ही भक्ति हो जाए जैसे गोपियों की कृष्ण में भक्ति की प्रेम। बस यही उसका कारण, गोपियों में कृष्ण में, गोपियों का कृष्ण में ये मेरे प्राण बल्लभ हैं कृष्ण, चाहे जैसे भी हो हमारे भी वो प्राण प्रियतम। अब यहां एक विचार करने की बात है, ये परीक्षित महाराज जी की मैया का नाम है पुष्कर, कृष्ण से इनका क्या संबंध है? कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा, और सुभद्रा जी के लड़के अभिमन्यु, अर्जुन अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है तो इनके कृष्ण क्या लगेंगे? मम्मी और ससुर लगेंगे। वो ससुर को कह रहे हैं परीक्षित महाराज, उनके बेटे होकर के गोपियों के जो परम लंपट हैं, जो कृष्ण हैं, वो तुम्हारे प्राण प्रियतम पति के, पति से भी पति तो एक है मर्यादा में लंपट हो, वो तुम्हारे प्राण प्रियतम हो, शादी हो चाहे न हो कोई बात नहीं, गोपियों से जैसे उनकी शादी में रही तभी प्राण प्रियतम रहे, ऐसे ये कृष्ण चंद्र के प्रति तुम्हारी यही भावना रहे कि तुम्हारे प्राण प्रियतम है, और गोपियां भी हमारी आराध्या देवी है, और उन गोपी में जो श्रेष्ठा श्रीमती राधिका जी हैं, वो जो सर्वोत्तम कृष्ण की हैं, उनकी मैं जन्म जन्मांतर के लिए सब समय के लिए नित्य में उनकी बेमोल की दासी बन जाऊं। ये तुम भागवतता, ये भागवतता, ये भागवतता का जो अपनी मैया को निर्लज्ज होकर के भी जो नहीं करनी चाहिए वो भी बात उन्होंने स्पष्ट करके उनको बताया। यदि श्रीमद्भागवत सुन करके हम लोग के हृदय में यह भावना आए, ये उन गोपियों के जो प्राण प्रियतम है वो भी हमारे प्राण प्रियतम हो, हमें जन्म जन्मांतर के लिए विमोल राधा जी की दासी हो जाए, तो ये श्रीमद्भागवत का सर्वोत्तम परिस्थिति को क्या हुआ। परीक्षित जी ने मैया को जब सुना दिया, एक छोटा सा इतिहास सुनाया, तो वो हम लोगों ने पहले बहुत वर्णन किया है, उस सबका सार ही मैंने ये सुनाया। कृष्ण के जितने भी रूप हैं, कृष्ण के जितने भी भाव हैं, गोपियों के भी जितने भाव हैं, उनमें सर्वोत्तम वही भाव जो अभी मैंने बतलाया। परीक्षित महाराज जी मैया को बतला करके, मैया जब दूर हो गई, अब देखा जब अब समय मेरा आ गया, तो एकदम बैठ के चित्त को लेकर और समाधि हो गए, शरीर से मन और इंद्रियों को निकाल लिया, और मन इंद्रियों से अपनी आत्मा को निकाल दिया, और आत्मा को देखा गया। उसका भागवत में वर्णन नहीं है, किंतु अब हमारे टीकाकारों से और परीक्षित महाराज जी के विचार से ऐसा मालूम होता है, समाधि होकर के उन्होंने देखा कि मैं बहुत सुंदरी कोई गोपी हूं। राधा और कृष्ण वृंदावन में विराजमान सेवा कुंज में वो है, और श्रीमती राधिका जी को मना रहे हैं, राधिका जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और अपने सिद्ध शरीर से एकदम इसी को ध्यान में लगा, मैं बहुत सुंदर हूं। और मेरा मैं कृष्ण की बेमोल थी, मैं दासी पाल दे दासी एकदम चित्त को उनमें लगा और चुपचाप है। शरीर में आप प्राण नहीं रहा, प्राण से भी अलग कर दिया, प्राण भी स्थूल है, मन भी स्थूल है, अहंकार भी बुद्धि भी स्थूल है, इन सब से भी अतीत कर दिया और स्थित कर दिया राधा जी के चरणों में। इसी समय में तक्षक किसी माली के फूलों में आया, इतने में एक ब्राह्मण आ रहा था जिसका नाम था कश्यप। वो आ रहा था परीक्षित महाराज जी को सांप डसने वाला है, मैं उसी सभा में चलूं, और जब तक्षक काट देगा मैं साथी साथ में मंत्र औषधि के द्वारा उनको जीवित करके जगत को दिखला दूंगा, यह हमारे मंत्र ने कितनी शक्ति है। जब वो निकट में आ गया तो तक्षक ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और इनके पास में गया, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं परीक्षित की सभा। किस लिए जा रहे हो? जा रहा हूं इसलिए परीक्षित महाराज जी को सब दसने वाला, मैं मंत्र की और औषधि की शक्ति जगत को दिखलाऊंगा, एक सेकंड में उनको जिला सकते शक्ति कर। बोले तुम नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है, ब्राह्मण का विश्वास है, तुम कुछ नहीं कर। उन्होंने देखा जरूर करूंगा, अवश्य में वो करूंगा, यदि सूर्य का पश्चिम में उगना संभव है तो हो सकता है, किंतु हमारी मंत्र और हमारा औषधि अव्यक्त। अच्छा तो देखो एक बात करो तो मैं ही वक्त सक्षक हूं और ये विशाल गट वृक्ष को मैं अभी काटता हूं और ये जल करके भस्म हो जाएगा, जड़ समय मूल समय तुम इसको जीवित कर दो तो मैं समझता हूं। अच्छा ठीक है तुम करो। बस उसने बड़े क्रोध से और समा कर और अपने फण से उनको मारा, और मारते ही एक सेकंड के अंदर में वृक्ष एकदम जल करके मूल समेत ध्वंस हो गया, एकदम भस्म हो गया। सत्य ने कहा अभी ये तो सचमुच मोहित तक्षक है। ठीक है बस अपना वो झोला उतारा और उतार करके उसमें जड़ियां जो एक ली और उसे घोट दिया और घोट करके मंत्र पढ़ा, उच्चारण किया और उस घोटी हुई औषधि को लेकर के जहां पर वृक्ष की जड़ थी सब भस्म हो गया, वहीं पर लेकर के मंत्र पूज करके फेंकने के साथ ही साथ में एकदम वट वृक्ष जैसा का तैसा उसमें से निकला, कोफले अंकुर निकला, अंकुर होकर सेकंड में बढ़ गया और मिनटों में एकदम विराट वृक्ष का एकदम जैसा का तैसा हो। लीला देगा उनको कहा प्रभु मैं आपके शरण, ब्राह्मण का वचन सीखा नहीं, आप तो पैसे के लिए जा रहे हैं ना, रुपये के लिए जा रहे हैं, ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव बतला दिया था उन्होंने, नंदी का भी अभी संपा दिया जिसमार्क ब्राह्मण लोग पैसे के लिए अपना धर्म कर्म सब कुछ बेच रहे, मोतियों और सरसियों की हीरा जवाहरातों का सोने के थाल में भर कर उनके सामने रख, या तो आप ले लें और लेकर के लौट जाइए और नहीं लेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ ही नहीं, उनको जिला कर कहीं क्या करेगा, वो राजा आपको थोड़ा ही सुना देगा। कहते उसकी मती और वो अपने पद से स्वस्थ होकर के और वो सब ले करके वहीं से बेचारा चल कि न चल लू कि न, किंतु यह दुख समान बस उसको विचलित कर दिया और वो लौट करते इतने में आकाशवाणी हुई, अरे लोग भी ब्राह्मण तुमने मंत्र और औषधियों को विक्रय कर दिया, आज से तुम्हारी विद्या निष्फल, अब तुम्हारी विद्या कहीं भी नहीं, इसके बाद चला गया। और ये प्रसन्न होकर के लौट आया, कुल में प्रवेश कर लिया और उन्होंने अपने समाधि में अपने शरीर से आत्मा को और एक दम लेकर के वृंदावन में निकाल करके वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में शिवासिनी ने राधा कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। इधर में सर्प ने देखा जब समय आ गया उनके सूखे हुए शरीर को जैसे सुख में वृक्ष होते हैं उसमें बड़े जोश से निकल करके और रूप धारण करके और सब कुछ बस शरीर में एकदम आग लग गई। अक्षण भर में उस मरे हुए शरीर को सूखे शरीर को उसने जला करके परीक्षित महाराज जी से पहले ही निकल सकते उनका सुख ही ये आत्मा अजर है अमर है ये शरीर सब समय मरा ये वस्त्र के समान है ये तो मरा हुआ सब समय है इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस शरीर के लिए शोक न करेंगे यथा लाभ उसी में संतुष्ट रह करके भगवान का करेंगे। हम लोग 8-9 दिनों में आपके एक एक व्यक्ति जो जितने भी यहाँ पर हैं या स्त्रियां हैं पुरुष हैं सब हमने आप लोगों को एक एक भागवत दिया ये सुनाना मैंने क्या है एक एक भागवत को दिया आप लोगों को आप लोग हमको कुछ देने के लिए हम लोगों को देने के लिए कोई प्रयास न करेंगे आप लोग हम लोगों को कुछ भी नहीं दे हम लोग यही चाहते हैं कि हम आप लोगों को जो भागवत दें इतने दिनों में दिया है उस भागवत को एक एक प्रति आप अपने साथ में ले जाएं और उन भागवत को जो हमने आप लोगों को दिया उसको प्रतिदिन पन्ने उलाटिए और इन कथाओं को याद रखें तब समय समझूंगा जो हम लोगों का भागवत देना ये आप लोग अधिक से अधिक कुछ कपड़े पैसे रुपये ये दे दें सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही छूट चुके हैं उनको इन सब चीजों से क्या मतलब है आप लोगों ने दिया हम लोग दूसरों को दे देंगे ठाकुर जी को और कुछ कर देंगे हम लोगों के लिए ये जो पहने हैं ओढ़े हैं लंगोटी हमारी वो हमारे लिए काफी है किंतु यदि हमारे इस परम धर्म को आपने ग्रहण कर लिया है भागवत का सार राधा जी को आपने यदि ग्रहण कर लिया है जिन लोगों ने हरि महामंत्र और मंत्र नहीं लिया है दीक्षा नहीं लिया है वो भागवत पद्धति के अनुसार में सीमित ये दीक्षा ग्रहण कर भगवान का भजन कर और जो हम लोगों ने ये जो भागवत को दिया बस कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनको पढ़िए समझिए आप लोगों का जीवन प्राप्त हो जाएगा यदि हम लोगों की जीवन ये यही भागवत का था श्रीमद भागवत ने स्वयं ही बतलाया पत्र श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर हृदय शब्द हृदय महामुनि व्यास जी ने जो ये श्रीमद भागवत को प्रकाश किया जगत में पुराण रूपी स्तुति को प्रकाश किया और शास्त्रों को कोई जरूरत नहीं इसके श्रवण से जो हम आपको भागवत दे रहे हैं इसका प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर मनन करेंगे या करेंगे इसके श्रवण करने से इसके पठन पाठन करने से एक ऐसी दिव्य चिंतामणि न जगे तो वो बहुत बहुत कुछ है श्रीमद भागवत की उससे तुलना नहीं होता श्रीमद भागवत जब थोड़ी सी श्रद्धा के साथ में सुधी श्रद्धापूर्वक हम सुनने की इच्छा रखते हैं तो और ऐसे सुन करके कुछ भी प्रेम के साथ में यदि उनको श्रवण करें भगवान बड़े बड़े ऋषि लोग जिनके चरण कमलों का ध्यान में भी चिंतन नहीं कर पाते वो भगवान का खनात बसी चूक हो जाएंगे ये असंभावी है। भक्ति देवी भी निर्जीव हो गई थी उनके पुत्र भी दुबले पतले और بوڑھے ہو گئے. جب آئے برندابن میں تو بھکتی دیوی تو نوجوان ہو گئے اور لڑکے بوڑھے ہو گئے. کیوں؟ کرم گیان یوگ تپسیا اتیادی کا برندابن میں آدر نہیں ہے, اس لیے گیان بھرا گئے تو بوڑھے رہ گئے کیونکہ یہاں پر کوئی پوچھتا ہے. اور بھکتی دیوی پرم نویر کشوری بن گئی. اس طرح سے آپ لوگ بھی جب بھکتی چلی رہیں گی تو گیان وراگیہ ان کا پتر بھی رہے گا, اور بھکتی نہیں رہی تو گیان وراگیہ کا کوئی ایک کوڑی بھی مولیہ نہیں ہے. یہ شرمد بھاگوت ہے. اس لیے شرمد بھاگوت کا یہ تاتپر ہے کہ جس کے سرن ماتر سے ہی شردھا پوروک یدی کوئی سنے تو کرشن سپنا برادر کے ساتھ ہی سکتی ہو, یہ اس کا مول پھل ہے. اور نہیں کالی داس کے
راجا
وکرمادتیہ کے دربار میں کالی داس اتیادی نو رتن تھے. ایک دن کوئی وہ کھوپڑی لے لیے ہوئے کوئی اوکھڑا گیا کپالی کا گیا, اس نے ایک کھوپڑی دکھلائی, بولے جیسے یہ مورکھ تھا کہ بدھیمان تھا یہ بتلاؤ. مہاراج کے سمجھ میں نہیں آیا, کالی داس اپستھت نہیں تھے, کوئی بھی بتلا نہیں سکا. ارے مورکھوں, اس کے لیے تم لوگ کہتا ہے کہ بدھیمان ہے, یہ نہیں بتلا سکا کہ یہ مورکھ تھا کہ یہ بدھیمان. میں چلتا ہوں, یہ کہتے تھے دو چار ان کو الانا دیتا ہوں وہاں سے. اتنے میں کالی داس آئے. مہاراج جی نے کہا جی مہاراج آپ لوٹ آئیے, ذرا اس کی بھی بات تو سن لیں. انہوں نے کالی داس سے پوچھا جی بھائی یہ جس کی کھوپڑی ہے بہت پرانی سکھی ہوئی, یہ بدھیمان تھا یا مورکھ تھا؟ جیسے ایک ڈنڈی لے آؤ, ناریل والی کی جھاڑو ہوتی ہے اس پتنی سے لے آؤ, ٹھیک ٹھیک لے آؤ. اسے کان میں دیا, کان میں دیا تو اس پار ہو گیا. یہ ڈبل مورکھ تھا کیونکہ ادھر سے سنا ادھر میں, جبھی ادھر میں آ کر کے جبھی سیکھ دینے سے جبھی بھیتر میں آ جاتی تو سب سمجھ سکتا ہے. سب لوگ دیکھ کر کے کالی داس کی بھی کی تعریف کر. اسی پرکار سے ویشنو لوگ پر یہ سب پریکھا کرتے ہیں, یہ بھاگوت سنا کہاں سنا, کیا سنا کیا سنا, وہ یہاں پر بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے, دیکھ کر کہیں بتلا دیں گے اس نے سنا کہ نہیں سنا. اس لیے ہم نے جو بتلایا یاد رکھیں گے, سب تو سننا ہوا ہمیں تو سننا نہیں ہوگا. پرشت جی میا نے سنا, پرشت جی نے سنا, سناتن سنک سنندن سناتن اتیادی نارد جی نے اس کو سنا. ایسے ہی آپ لوگ سننے کی چیشٹا کریں گے آپ لوگوں کا جیون دیوتا دیویوں کو آدر دینا ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, ان کو آدر دے, ایک چیٹی کو بھی آدر دینا, یہی شریمد بھاگوت کا سندیش. سمست پرانیوں میں بھگوان کو دیکھو اور سمست پرانیوں کو بھگوان میں دیکھو, یہ تو ٹھیک ہے, کنتو کرشن کے استھان میں اور کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے. رادھا جی اور کرشن کے استھان ہمارے ہردے کے وہی سنگھاسن پر بیٹھے ہیں اور سب کو سمان ہوں گے. یہ شریمد بھاگوت کا ایک اور بات ہے. بھاگوت سننے سے بھی نہیں ہوگا, بیڑی سگریٹ تمباکو یہ سب جو مادک دربیہ ہیں, دھومر پانی ان کو, پیاز لہسن سفید آلو بازار میں آج کل بہت سستا بک رہا ہے, ادھر مت دیکھیے, انڈے گوشت اتیادی کی طرف مت جائیے. شدھ سداچار رکھ کر کے بھگوان کا پوجا, جب آہار شدھ نہیں ہوا تو کبھی بھی وچار شدھ نہیں ہوگا, اس لیے آہار شدھی بھی چاہیے. اس لیے شریمد بھاگوت میں بتلایا گیا پہلے دیوتم پان, जुआ मत खेलो। आजकल गवर्नमेंट ही लॉटरी सिखला रही है, आप लोग उधर मत जाइए ना, तो एक दिन में दवाला निकल जाएगा, रास्ते के खतील हो जाएंगे, पहले दो पैसा मिलेगा और अंत में सब कुछ चलाएगा, चित्त चंचल हो जाएगा, भागवत नहीं सुन सकेंगे। इसलिए दूतन पान मन मदिरा इत्यादि कारण अवैध स्टेशन समस्त माताओं को, स्त्रियों को, माता बहन या कन्या, उनके प्रति कभी भी कुदृष्टि मत करो, नहीं तो यह सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। और कृष्ण के चरणों में जैसे मैंने कहा, ये कृष्ण के स्वरूप है श्रीमद्भागवत। समाधि देवम सर्वनाधानम समालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूप। सेतु पर कहीं पुल को अभी हम लोग समाप्त करेंगे, अब तुरंत यहाँ पर अभी हवन कार्य होगा और हवन कार्य के बाद में ठाकुर जी का निवेदित प्रसाद सब लेकर के पास, ऐसे मत चलेगा। अब दो एक मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। ये श्रीमद भागवत जो है वो कृष्ण के स्वरूप है, उनसे कम मत देखना। और ये कहते हैं पुल है, पुल किसको कहते हैं, सेतु को पुल कहते हैं। पुल कहां पर होता है, नदी के ऊपर, इस पार से उस पार जाना है कहां पर पुल की जरूरत है, तो ये नदी क्या है, अपार संसार समुद्र। अनंत काल से हमारा जन्म हो रहा है और जन्म होता रहेगा, मरण भी होता रहेगा, ये अपार समुद्र है। उस सेतु के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है चलने का जाने का। वो सेतु क्या है, सेतु माने दो वस्तुओं को मिलाती है, वो सेतु है, उस पार को इस पार से जोड़ देती है, तो ये सेतु है। उस पार माने राधा कृष्ण की सेवा, और इधर में क्या है, भोग संसार है, इन दोनों को जोड़ देती है। और नौका में जाएंगे ना, पैसा लगेगा, पैसा देकर के जाना पड़ेगा, और पुल से पार हो जाएंगे, पैसे पैसे की जरूरत है, नौका जाएगी समय से, और पुल पर क्या है, जब भी आओ तभी पार करते जाओ, भीड़ भाड़ का नहीं रहेगी, और नौका में जब नौका डूब गई तो मुक्ति हो जाए। एक देशी मतभागवत पुल के समय है उस पर, किंतु पुल के पार्टी में एक व्यक्ति खड़े हैं, वो कौन है, गुरुदेव। बिना गुरु का कोई नहीं जाएगा, तो जिनको गुरु नहीं है या उनके लिए समझते हैं वहीं पर रोक देंगे। वहीं पर जम के दूत भी हैं, बैकुंठ के दूत, दोनों प्रकार के दूत दोनों तरफ में खड़े हैं। एक तो पहले ही जम के दूत उन लोगों को रोक लेंगे, और आगे जब भी पढ़ेंगे तो वो पासपोर्ट देखना चाहेंगे, कौन, विष्णु के दूत, उसे भी पार कर गए ना, तो ब्रज के गोपीश्वर महादेव भी खड़े हैं, बस बैकुंठ तक रहो, आगे मत बढ़ो, बैकुंठ में रोक। ब्रज में कौन जाएगा, गोपियों की जिन पर कृपा है, श्रीमद भागवत की यथार्थ कृपा जिन पर है, केवल वही उधर में जा सकेंगे। और सब गरीब में कोई इस देवी धाम में, कोई सिद्ध लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई अयोध्या धाम में, कोई गोलोक में, कोई द्वारका में, कोई मथुरा में, सब रोक लिए जाएंगे, बस बहुत कम गिनती वाले लोग वृंदावन में जाने पर भी कोई गोकुल में रह जाएंगे, कोई नंदगांव में रहेंगे, कोई कोई दिव्य व्यक्ति ही वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन के पास में राधा कुंड में राधा कृष्ण की विश्व सेवा में, ये भागवत का संदेश है। जब इसमें आप लोगों की थोड़ी सी भी रुचि का उत्पादन हो गया तो समझे ये तुम्हारा भागवत श्रवण करना किसान, ये भागवत का फल। कभी भूल करके भी भागवत से धन धान्य, पुत्र कन्या, संपत्ति, मुक्ति इत्यादि, वैकुंठ की भक्ति मत मानना, बस राधा जी के चरणों में हमारी एकांतिक रूप में सेवा प्रार्थना है, इसके अतिरिक्त और भी भागवत के बहुत महात्मा है। मैंने संक्षेप में सबका सार और सर्वोत्तम भागवत का महत्व आप लोगों के सामने पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको ग्रहण करके भागवत की एक एक पोथी आप लोग अपने हृदय में, वो हाथ में नहीं आएगी, वो पोथी अपने हृदय में बहुत सुंदर रूप से रख करके ले और प्रतिदिन इसकी सेवा बस इसी से भागवत का समझा। आज मैं यही पद व्यक्ति समाप्त करता हूँ। आप लोग अभी यहाँ पर आरती होगी, भागवत की आरती करके और वही जा जाना है प्रार्थना सुनाया है, ऐसी प्रार्थना करके फिर यहाँ पर अभी हवन होगा। हवन में सभी लोग कम से कम एक एक दो दो या चार चार आहुति देकर के धीरे धीरे, भीड़ न हो, आहुति देकर के और साथ वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, प्रेमानंद जी और लोग हैं, इसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा बस का भी जरूरी है, इन लोगों की इच्छा है जब हम लोग बस कर देंगे, ये तो जल्दी से उठा लो और मैं उनका एक एक नाम पुकारते जाओ।